लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। बुद्धिमान अपना ज्ञान छिपाए रखता, किंतु मूर्ख अपनी मूर्खता घोषित करता है। परिश्रमी शासक बनेगा, किंतु आलसी को बेगार में लगाया जाएगा। मन की चिंता मनुष्य को निराश करती है, किंतु एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द उसे आनंदित कर देता है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 12वें अध्याय के 23वें, 24वें और 25वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। यहाँ इसी तथ्य के प्रति ध्यान आकर्षित कराया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रचार नहीं करते, वे अपने विवेक का ढिंढोरा नहीं पीटते। वे अपने ज्ञान का संचार तब करते हैं जब वह दूसरों के भले के प्रति अभिमुख होता है, अपनी प्रशंसा में नहीं लगते, बल्कि सभी वरदानों के लिए ईश्वर को अनवरत धन्यवाद ज्ञापित किया करते हैं। इनके विपरीत मूर्ख लोग होते हैं जो अपनी मूर्खता का प्रचार करते, और इसीलिए उनमें भले बुरे और मान सम्मान तथा अपमान में अंतर की समझ कम ही होती है। 12वें अध्याय के 24वें पद में लेखक कहता है, परिश्रमी शासक बनेगा, किंतु आलसी को बेगार में लगाया जाएगा। श्रोताओं, उद्योग वरीयता का एक तरीका है, इसलिए जो मनुष्य कष्ट उठाकर भी अध्ययन और निष्ठापूर्वक सेवा से योग्य और सक्षम बनते हैं, वे अन्यों के लिए रुचिकर बनेंगे तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। ऐसी प्रतिष्ठा जो उन्हें अपने चारों ओर एक प्रभुत्व प्रदान करेगी। वचन और सिद्धांत में परिश्रम करने वाले दोहरे सम्मान के योग्य हैं, और जो व्यक्ति जवानी में परिश्रमी होते हैं उन्हें राज्य करने के योग्य माना जाएगा तथा वे अपने कार्यों के द्वारा अपनी वृद्धावस्था में भी आराम पाएंगे। इनके विपरीत वे व्यक्ति हैं जो परिश्रम नहीं करना चाहते, किसी प्रकार का दर्द नहीं सहना चाहते और बेईमानी से जीने को एक कला समझते हैं। वे अपने आलस के कारण बेगार में लगाए जाएंगे और हमेशा अन्यों के अधीन ही रहेंगे। आगे 25वें पद में लेखक कहता है, मन की चिंता मनुष्य को निराश करती है, किंतु एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द उसे आनंदित कर देता है। इन शब्दों में उदासी का कारण और उसका परिणाम बताया गया है। यह हृदय पर रखे एक बोझ के सदृश है, देखभाल और उत्कंठा का बोझ, भय और दुख का बोझ, जो मनुष्य को निराशा और अवसाद में डूबने के लिए मजबूर कर देता है। तथापि लेखक कहता है कि एक अच्छा शब्द, एक मीठा बोल, विश्वास के साथ कहा गया एक शब्द मन को आनंदित करता है। सार यही कि हम ईश्वर पर विश्वास कर अपने काम करें, ताकि मन प्रसन्न और संतुष्टि का अनुभव प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त ने सच्चे और विश्वासी मनुष्यों को इसी प्रकार का आश्वासन दिया है। संत मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और अपने से सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस प्रकार श्रोताओं, विनम्र और विनीत बनकर प्रभु ईश्वर से प्रार्थना की जाए तथा उनमें अपने विश्वास को सुदृढ़ किया जाए, यही है आनंद और शांति की कुंजी। आगे सूक्ति ग्रंथ के 12वें अध्याय के अंतिम 3 पदों में लेखक इस बात को रेखांकित करता है कि केवल धर्मी व्यक्ति ही अन्यों को परामर्श देने के योग्य होता है। ये पद इस प्रकार हैं: धर्मी दूसरों का पथ प्रदर्शन करता, किंतु दुष्ट का मार्ग उन्हें भटका देता है। आलसी के हाथ शिकार नहीं लगता, किंतु परिश्रमी धन एकत्र करता है। धार्मिकता का मार्ग जीवन की ओर, किंतु दुष्टता मृत्यु की ओर ले जाती है। श्रोताओ, जो व्यक्ति खुद पर संयम रखता, जो अनुशासन में रहता और सबसे महत्वपूर्ण जो ईश नियमों का पालन करता तथा उसके अनुकूल अपना जीवन यापन करता है, वही व्यक्ति धर्मी अथवा धर्म परायण कहलाता है। और ऐसे ही व्यक्ति को परामर्श देने के योग्य ठहराया गया है। इसीलिए लेखक कहता है कि धर्मी व्यक्ति ही अन्यों का पथ प्रदर्शन करता है, जबकि दुष्टों का मार्ग लोगों को भटका देता है। दुष्टों के मार्ग पर व्यक्ति अपने संयम, धैर्य और अनुशासन को खो बैठता है तथा गलत कामों में लग जाता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि बुरी संगति या बुरे दोस्त बुराई करने के लिए उकसाते हैं, और यदि व्यक्ति कमजोर हो तो उस पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कमजोर व्यक्तियों की नासमझी उन्हें विनाश की ओर ढकेल सकती है। गलत दोस्ती किसी भी व्यक्ति को भटका सकती है। इसी के प्रति 26वें पद में सचेत किया गया है। फिर 27वें पद में लेखक कहता है, आलसी के हाथ शिकार नहीं लगता, किंतु परिश्रमी धन एकत्र करता है। श्रोताओ, सूक्ति ग्रंथ का लेखक इससे पूर्व भी आलस के विरुद्ध चेतावनी दे चुका है। आलसी व्यक्ति की, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, जो अपना समय व्यर्थ ही गंवा देता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अंग्रेजी में कहावत है ना, द लेजी मैन डज नॉट रोस्ट वॉट ही टुक इन हंटिंग, यानी कि आलसी व्यक्ति अपने शिकार को भून नहीं पाता है। वह शिकार करने की सारी कठिनाइयों को भले ही पार कर ले, किंतु अपने शिकार का आनंद नहीं उठा पाता। आलसी व्यक्ति योजनाएं बनाता है, ख्याली पुलाव पकाता है, किंतु आलस के कारण अपनी किसी भी योजना को अंजाम नहीं दे पाता। दूसरी ओर परिश्रमी अपने परिश्रम का फल उठाता है। वह अपने परिश्रम से अपने लिए और अपने परिवार के लिए धन एकत्र करता है। श्रोताओ, परिश्रम किसी भी व्यक्ति की अनमोल संपत्ति होती है। एक पुरुष या महिला के पास कई कीमती चीजें हो सकती हैं, लेकिन इनमें परिश्रम सूची में सबसे ऊपर होता है। बहुत से बड़े बड़े काम थोड़ी सी प्रतिभा तथापि बड़ी लगन से पूरे हो सकते हैं। फिर सूक्ति ग्रंथ के 12वें अध्याय के अंतिम पद में लेखक कहता है, धार्मिकता का मार्ग जीवन की ओर, किंतु दुष्टता मृत्यु की ओर ले जाती है। वस्तुतः श्रोताओं, धार्मिकता है क्या? ईश्वरीय या नैतिक कानून के अनुसार कार्य करना ही धार्मिकता है। धार्मिकता का अर्थ है अपराध या पाप से मुक्त रहना। इसका अर्थ है नैतिक रूप से सही या न्यायोचित एवं न्याय संगत निर्णय लेना। काम, क्रोध, मद और लोभ से दूर रहना, यही है धार्मिकता। भले ही धार्मिकता का जीवन जीने में मनुष्य को ईश नियमों के अधीन रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और इसीलिए कई लोगों को यह उबाऊ या अप्रिय लग सकती है, विशेषकर उन लोगों को जो सांसारिक माया मोह में पड़े रहते हैं, जो आत्मा से अधिक अपने शरीर की परवाह करते हैं। ऐसे ही लोग शैतान के जाल में आसानी से फंस जाते हैं तथा धार्मिकता को उबाऊ और अप्रिय मानने लग जाते हैं, जबकि सच्चा आनंद, सच्चा सुख केवल धार्मिकता के जीवन में है, इसी में है जीवन का सुख, इसी में है मनुष्य की मुक्ति। श्रोताओ, सूक्ति ग्रंथ में निहित इन्हीं कुछ परामर्शों के साथ आज हम अपना प्रसारण समाप्त करना चाहेंगे। आगामी सप्ताह 25 पदों वाले सूक्ति ग्रंथ के 13वें अध्याय की व्याख्या आरंभ करेंगे। अभी के लिए श्रोताओं को इतना ही बता दें कि 13वें अध्याय में लेखक का परामर्श है कि मनुष्य ईश्वर के नियमों के अनुकूल जीवन यापन करे, चतुराई से काम करे, अच्छी समझ रखे तथा अन्यों को सीधे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करे, अन्यथा उसे गरीबी और अपमान सहना पड़ेगा।
शांति का तुम घर हो, बीच हमारे बाट लो। शांति का तुम घर हो।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने मानव जाति एवं पर्यावरण के बीच संबंध को पुनर्स्थापित करने का प्रोत्साहन दिया है। 22 सितंबर के ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा, हमारे उपभोग एवं उत्पादन का तरीका एवं हमारी जीवन शैली सृष्टि एवं सभी लोगों के समग्र विकास का सम्मान करे। आइए हम मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच संबंध को नवीकृत करें। यह एक दर्पण है जो ईश्वर के रचनात्मक प्रेम को दर्शाता है। संत पापा फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार को डेलोइट ग्लोबल की सभा के 600 प्रतिभागियों से वैटिकन के संत पॉल सभागार में मुलाकात की तथा उन्हें एक अधिक मानवीय, न्यायपूर्ण और भ्रातृत्वमय विश्व बनाने हेतु प्रोत्साहन दिया। डेलोइट ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है जो विभिन्न परिस्थितियों में सही निर्णय लेने के लिए व्यापार जगत की सहायता करती है। कंपनी के लिए करीब 3,50,000 लोग काम कर रहे हैं, जो अन्य संगठनों को सलाह और सहायता प्रदान करने में लगे हुए हैं। संत पापा ने उन्हें संबोधित कर कहा, आज दुनिया बिगड़ती पर्यावरणीय परिस्थितियों से जूझ रही है। इसके अतिरिक्त कई लोग और सामाजिक समूह पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य मौलिक अधिकारों की कमी के कारण मर्यादाहीन तरीके से रहते हैं। उन्होंने गौर किया कि यद्यपि हमारा मानव परिवार वैश्वीकृत है और परस्पर जुड़ा हुआ है, गरीबी, अन्याय एवं असमानताएं बनी हुई हैं। संत पापा ने आधुनिक विश्व की समस्याओं पर गौर करते हुए कहा कि हम लगातार संकटों का सामना कर रहे हैं। हमने 2007 के वित्तीय संकट से निपटना समाप्त ही नहीं किया था कि महामारी और अब यूक्रेन में युद्ध ने अपने वैश्विक प्रभाव के साथ हमें संकट में डाल दिया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना भी ग्रह को करना पड़ रहा है। क्रूर और छिपे हुए युद्ध विभिन्न क्षेत्रों में लड़े जा रहे हैं और इसके कारण लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो रहे हैं। इसके समाधान हेतु संत पापा ने सामाजिक न्याय में बढ़ने पर जोर दिया तथा संत पॉल 6वें के शब्दों में कहा कि सामाजिक न्याय का विकास ही शांति का नया नाम है। इस कठिन परिस्थिति में पेशेवर सलाहकार क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि वे एक अभिन्न परिप्रेक्ष्य एवं दृष्टिकोण के साथ अपने विश्लेषण एवं प्रस्तावों को व्यवस्थित कर एक बड़ा काम कर सकते हैं। दरअसल लोगों के लिए सम्मानजनक रोजगार, हमारे सामान्य घर की देखभाल, आर्थिक और सामाजिक मूल्य एवं समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव, सभी परस्पर जुड़े हुए हैं। संत पापा ने सलाहकारों को अभिन्न सलाहकार कहा, जो समस्याओं और उनके संबंधित समाधानों के बीच संबंधों को ध्यान में रखते हुए संबंध परक मानव विज्ञान की अवधारणा को गले लगाते हैं। संत पापा ने उन्हें प्रोत्साहन देते हुए कहा, मैं आपको अभिन्न सलाहकार बनने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, ताकि इस ग्रह पर हमारे जीने के तरीके को फिर से उन्मुख करने में सहयोग दिया जा सके, जिससे हमने जलवायु और असमानता दोनों ही रूपों में क्षतिग्रस्त कर दिया है। प्रेमोंस्टेटेशन ऑर्डर की स्थापना की 900वीं वर्षगांठ के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने ऑर्डर के सदस्यों को प्रोत्साहन दिया कि वे अपने समुदाय के इतिहास पर चिंतन करें एवं भविष्य की ओर देखें तथा अपने जीवन को यूखरिस्त और सुसमाचार में निहित भाईचारापूर्ण सहअस्तित्व के साथ मिशनरी के रूप में जिए। प्रेमोंस्टेटेशन ऑर्डर की स्थापना की 900वीं वर्षगांठ पिछले साल मनाई गई थी। ऑर्डर की स्थापना संत नॉर्बर्ट ने 1120 में फ्रांस के प्रेमोंत्रे में की थी, जो जल्द ही यूरोप के अन्य प्रांतों में फैल गया था। संत अगस्टीन के मठवास के नियम एवं सिस्टरसियन के सक्रिय समर्पित जीवन की विचारधारा से प्रभावित होकर प्रेमोंस्टेटेशन मठवासी चिंतनशील जीवन और सक्रिय जीवन को एक साथ जीते हैं। अमेरिका के युवा शोधकर्ता अंतोनी ग्विदोती ने बतलाया कि वे असीसी में इकोनॉमी ऑफ फ्रांचेस्को के दौरान किस तरह आसपास की असमानताओं के बारे सीखने की उम्मीद रखते हैं, जब वे और उनके साथी संत फ्रांसिस के मूल्यों एवं सिद्धांतों को लागू करेंगे। अंतोनी इकोनॉमी ऑफ फ्रांचेस्को में एक शोधकर्ता एवं असमानता गांव में ग्रामीण के रूप में भाग ले रहे हैं, जो 22 से 24 सितंबर को मध्य इटली के असीसी शहर में संपन्न होगा। वैटिकन न्यूज से बातें करते हुए उन्होंने बतलाया कि पूरे कार्यक्रम में कई गांव हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा। अंतोनी ने कहा, मेरे गांव का नाम असमानताओं का कार्बन डाइऑक्साइड है। अंतोनी ने बतलाया कि उनका शोध आर्थिक प्रतिष्ठा और सामुदायिक स्वास्थ्य निर्माण पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, वह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो वास्तव में नीति निर्माण के साथ मेरे काम के बारे सोचता है, स्थानीय स्तर पर इस बारे में सोचता है कि इन विचारों एवं इन सिद्धांतों को कैसे वास्तविक क्रिया में बदलना है, ताकि लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। हालांकि हम नहीं जानते कि कैसे किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बात हमारे सिद्धांतों की पहचान करने से आती है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि हमारे पास सार्वजनिक नीति की तुलना करने के लिए कोई मानक आधार नहीं है, तो हमारी सार्वजनिक नीति सार्वजनिक हित के अलावा किसी दूसरे स्वामी की सेवा करने जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अंतोनी ने कहा, पहली चीज जो हमें करना है वह है बातचीत और इस तरह की मुलाकातें जिसमें हम सचमुच कह सकें ये ही हमारे सिद्धांत हैं, हमारे मूल्य, और तब हम एक साथ काम करेंगे और कहेंगे कि हमारे सार्वजनिक हित के लिए इसका क्या अर्थ है। अंतोनी का कहना है कि मूल्य और सिद्धांत खासकर असीसी जैसे स्थान में बिल्कुल स्पष्ट है। जब विश्वभर से लोग एक साथ आते हैं, हम कुछ न कुछ लेकर आते हैं जो इस कार्यक्रम का और हम जो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण आयाम है। उन्होंने जोर दिया कि हमें एक वैश्विक आंदोलन की जरूरत है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।